शांति ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को एक सुंदर टाइटल दिया है। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे व्यापारी हो। व्यापारी क्या करता है? अपनी सारी प्रॉपर्टी को, सारी चीज को चेक करता है, कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। लेकिन बाबा ने कहा तुम व्यापारी ऐसे हो कि अपना पोता मेल चेक करना है, किसको दुख तो नहीं दिया, कुछ कैसे सेवा की। तो बाबा ने कहा तुमको अपना पोता मेल चेक करने के लिए क्या करना है? अंतर्मुखी होकर रहना है। जब अंतर्मुखी होंगे तो अपना पोता मेल भी अच्छी तरह से चेक कर सकेंगे। साथ साथ बाबा ने नई दुनिया में, हमारी सतयुग दुनिया में कैसा मौसम होगा, वहाँ हमारे महल कैसे होंगे, कितना सोना होगा, कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, ये सब बाबा ने बताया है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को सर्विस भी करनी है और सर्विस करके बाप का नाम बाला करना है। तो बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों की सर्विस से समझ आते हैं कि कौन महारथी हैं, कौन घोड़े सवार हैं और कौन प्यादे हैं। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज का मुख्य मुरली का आज की तारीख है 30 अप्रैल 2024। आज की तारीख है 30 अप्रैल 2024। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे अपना पोता मेल चेक करो कि सारे दिन में बाप को कितना समय याद किया, कोई भूल तो नहीं की। क्योंकि तुम हर एक व्यापारी हो। मीठे बच्चे अपना पोता मेल चेक करो कि सारे दिन में बाप को कितना समय याद किया, कोई भूल तो नहीं की। क्योंकि तुम सब व्यापारी हो। आज का प्रश्न है, कौन सी एक मेहनत अंतर्मुखी बन करते रहो तो अपार खुशी रहेगी। कौन सी एक मेहनत अंतर्मुखी बन करते रहो तो अपार खुशी रहेगी? इसका उत्तर है कि जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है, जो सामने आता रहता है, उन सबसे बुद्धि योग निकाल सत्व प्रधान बनने के लिए बाप को याद करने की मेहनत करते हो। कई जन्मों का हिसाब किताब है, कई बातें आती हैं। तो बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर जो किया है, जो सामने आता है, उन सबसे बुद्धि योग निकाल सत्व प्रधान बनने के लिए बाप को याद करते रहो। चारों तरफ से बुद्धि हटाए अंतर्मुखी बन बाप को याद करो। अंतर्मुखी बन के बाबा को याद करना है। जब अंतर्मुखी बनेंगे तब अपना पोता मेल भी चेक कर सकते हैं। चारों तरफ से बुद्धि हटाए अंतर्मुखी बन बाप को याद करो। सर्विस का सबूत दो तो अपार खुशी होगी। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ये तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप हुआ बेहद का बाप, रूहानी बच्चे भी हुए बेहद के बच्चे। बाप भी रूहानी और वो बेहद का है, और रूहानी बच्चे भी बेहद के बच्चे हैं। बाप को तो सब बच्चों की सदगति करनी है। बाबा कहते कोई सुने ना सुने, मुझे तो सबकी सदगति करनी है। बाप को तो सब बच्चों की सदगति करनी है। किस द्वारा करनी है? इन बच्चों द्वारा विश्व की सदगति करनी है। सारे विश्व के बच्चे तो यहाँ आकर नहीं पढ़ते, पढ़ेंगे कौन, जो ब्राह्मण होंगे वही पढ़ेंगे ना, सारे नहीं आएंगे तो भी बाबा सबकी सदगति करते हैं। सारे विश्व के बच्चे तो यहाँ आकर नहीं पढ़ते हैं, नाम ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मुक्ति तो सबकी होती है, मुक्ति कहो या जीवन मुक्ति कहो। बाबा ने क्यों कहा जीवन मुक्ति, क्योंकि जो अपने समय पर आते हैं, द्वापर में आते हैं या कलयुग आते हैं, पहले उनको भी सुख होता है ना, सतयुग में जाने वालों को तो पूरा ही सुख है। मुक्ति कहो या जीवन मुक्ति कहो, मुक्ति में जाकर फिर भी सबको जीवन मुक्ति में आना ही है। तो ऐसी कहें कि जीवन मुक्ति में सब आते, जहां तक कि लास्ट जन्म वाला भी पूरा आधा टाइम सुख भोगता है, तो आधा टाइम उसको जीवन मुक्ति का अनुभव होता है और आधा टाइम धीरे धीरे वो दुख भी भोगता है। तो ऐसे कहेंगे सब जीवन मुक्ति में आते हैं, क्योंकि वाया मुक्ति धाम एक दो के पीछे आना ही है पार्ट बजाने, तब तक मुक्ति धाम में ठहरना पड़ता है। जैसे जैसे पार्ट है उनका पार्ट शुरू हो तब तक मुक्ति धाम में बैठते, तब तक मुक्ति धाम में ठहरना पड़ता है। बच्चों को अब रचयिता और रचना का मालूम पड़ गया है, ये सारी रचना अनादि है। रचयिता तो एक ही बाप है, ये जो भी सब आत्माएं हैं वह सब बेहद के बाप के बच्चे हैं। जब बच्चों को मालूम पड़ता है तो वही आकर के योग सीखते, जब बच्चों को मालूम पड़ा कि बाबा आया है ज्ञान दे रहे हैं तो वही आते योग सीखते, बाहर वाले थोड़ी आएंगे कहेंगे बहुत अच्छा कह के चले जाएंगे। जब बच्चों को मालूम पड़ता है वही आकर योग सीखते हैं। ये भारत के लिए ही योग है, बाप आते भी भारत में है, भारतवासियों को ही याद की यात्रा सिखलाकर पावन बनाते हैं, और नॉलेज भी देते हैं कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। एक तो पावन बनाते हैं, दूसरा सृष्टि चक्र की नॉलेज देते हैं, और ये नॉलेज भी देते हैं कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, ये भी बच्चे जानते हैं। जो रुद्र माला भी है और गाई और पूजी जाती है, सिमरन की जाती है, भक्त माला भी है, ऊंचे से ऊंचे भक्तों की माला है, और भक्त माला के बाद होनी चाहिए ज्ञान माला। द्वापर में है भक्त माला, फिर उसके बाद है ज्ञान माला, तो भक्त माला के बाद होनी चाहिए ज्ञान माला। भक्ति और ज्ञान है ना, भक्त माला भी है तो रुद्र माला भी है, पीछे फिर रुंड माला कहा जाता। भक्त तो भगवान को नहीं जानते ना, द्वापर से पूजा करते रहते, बाबा आते हैं तो फिर बाबा क्या कहते, रुद्र माला बनती, फिर सतयुग में जाते रुंड माला बनती है, फिर पीछे फिर रुंड माला कहा जाता है। क्योंकि ऊंचे से ऊंचे इस मनुष्य सृष्टि में है विष्णु, जिसको सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो ये हैं, इनकी माला है, आखिर ये माला बन जाएगी तब ही रुद्र माला और विष्णु माला वैजयंती माला भी। पहले ब्राह्मणों की माला बनती है, पहले शिव बाबा की माला रुद्र माला विष्णु माला और वैजयंती माला बनती है, आखिर ये माला बन जाएगी तब ही वह रुद्र माला और विष्णु की वैजयंती माला बनेगी। ऊंचे से ऊंचा है शिव बाबा, फिर ऊंचे से ऊंचा है विष्णु का राज्य। शोभा के लिए भक्ति में कितने चित्र बनाए, पहले एक सिंपल चित्र बनाते थे, अभी तो देखो दिन प्रतिदिन कितने सुंदर सुंदर चित्र बनाते जाते, इतने सुंदर बनाते जाते हैं, शोभनीय बनाते, उसको देखने के लिए भी कितने जाते हैं। शोभा के लिए भक्ति में कितने चित्र बनाए हैं, परंतु ज्ञान कुछ भी नहीं। तुम जो चित्र बनाते हैं उनकी पहचान देनी है ताकि मनुष्य समझ जाए, नहीं तो शिव और शंकर को मिला देते हैं। बाबा ने समझाया है सूक्ष्म वतन में भी सारी साक्षात्कार की बात, सूक्ष्म वतन में जाते हैं साक्षात्कार होता है, तो बाबा कहते वहां कोई ऐसी चीजें नहीं है लेकिन वो साक्षात्कार होता है। बाबा ने समझाया है सूक्ष्म वतन में भी सारी साक्षात्कार की बात है, हड्डी मांस वहां पर होता नहीं क्योंकि वो तो सूक्ष्म फरिश्ते है ना, साक्षात्कार करते हैं संपूर्ण ब्रह्मा भी है परंतु वह है संपूर्ण अव्यक्त। अभी अव्यक्त ब्रह्मा जो है, अभी व्यक्त जो ब्रह्मा जो है उसको अव्यक्त बनना है। तो गुलजार दादी अपना अनुभव सुनाती थी तो जब वो ट्रांस में गई तो बाबा को संपूर्ण अव्यक्त स्टेज देखा तो कहती हैं कि ये बाबा हैं और वहां वाला बाबा तो बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था, फरिश्ता था, तो वो है संपूर्ण स्टेज। और जब बाबा पुरुषार्थ करे तो व्यक्त में है ना, तो गुलजार दादी बताती थी बाबा को कहती बाबा आपका उस रूप मैंने देखा लेकिन वो रूप जो है वो तो बहुत सुंदर था, बहुत फरिश्ता जैसा था। ब्रह्मा बाबा चुपचाप सुनते रहते थे, उनको पता था कि मुझे जाकर के ऐसा स्वरूप धारण करना है, अभी तो मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं। तो बाबा कहते व्यक्त ही अव्यक्त होता है, जिसको फरिश्ता कहते हैं उनको अव्यक्त बनना है। सूक्ष्म वतन में चित्र रख दिया है, सूक्ष्म वतन में जाते हैं कहते हैं बाबा ने शुभी रस पिलाए। अब सूक्ष्म वतन में बाबा तो खिलाते भी हैं, हंसाते भी हैं, बहलाते भी हैं, शुभी रस भी पिलाते, फिर बाबा इसका राज बता रहे हैं। और वहां झाड़ आदि तो होती नहीं कि झाड़ हो, आम उठाओ, उसका रस निकालो, वो तो सब यहाँ स्थूल में होता है, लेकिन ये तो एक दृश्य है बाबा दिखाते हैं। बाबा कहते हैं बाबा ने शुभी रस पिलाया। शुभी रस समझते किसको? जिसको आम रस कहते हैं। उस समय इसकी भाषा क्या थी? शुभी रस, बहुत स्वीट होता है, बहुत हेल्दी होता है। तो बाबा कहते हैं कि सूक्ष्म वतन में जाते हैं कहते बाबा ने शुभी रस पिलाया। अब वहां झाड़ आदि तो होता नहीं, वैकुंठ में है झाड़, सब कुछ तो वैकुंठ में है, लेकिन ऐसे नहीं कि वैकुंठ से लेकर के आके पिलाते होंगे, ऐसा भी नहीं कि वैकुंठ से फल ले आते और आकर के सूक्ष्म वतन में पिलाते हैं। ये तो सूक्ष्म वतन में सब साक्षात्कार की बातें हैं। अब तुम बच्चे जानते हो वापिस घर जाना है, और बाबा सूक्ष्म वतन की बात करके फिर याद कराते कहाँ जाना है उसका पुरुषार्थ करो। वापिस घर जाना है और आत्म अभिमानी बनना है, मैं आत्मा अविनाशी हूँ, ये शरीर विनाशी है, ये आत्मा का ज्ञान भी तुम बच्चों में है। वह तो आत्मा क्या है वह भी नहीं जानते, आत्मा कहते लेकिन आत्मा क्या है, उसका पार्ट क्या है, वो लोग तो कुछ भी नहीं जानते ना। वह तो आत्मा क्या है वह भी नहीं जानते, उन लोगों को ये भी मालूम नहीं कैसे उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। ये नॉलेज सिर्फ बाप ही देते, आत्मा अनादि अविनाशी है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट है, ये नॉलेज बाबा कहते केवल बाप ही देते हैं। अपनी भी नॉलेज देते हैं और किसकी देते हैं? आत्मा की देते हैं, आत्मा के पार्ट की भी देते हैं, अपनी भी नॉलेज देते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनाते, अपनी नॉलेज, आत्मा की नॉलेज, और तीसरा तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनाते हैं। बस यही पुरुषार्थ करते रहो, कौन सा? कि हम आत्मा हैं, हमें परमात्मा के साथ योग लगाना है। सर्वशक्तिवान पतित पावन एक बाप को ही कहते हैं, सन्यासी कहते हैं पतित पावन आओ, कोई तो ब्रह्म को ही पतित पावन कह देते हैं। अब तुम बच्चों को भक्ति का भी ज्ञान मिलता है कि भक्ति कितना समय चलती है और ज्ञान कितना समय चलता है, ये बाप बैठ समझाते हैं, पहले तुम भी कुछ नहीं जानते थे, मनुष्य होकर तुच्छ बुद्धि बन पड़े हैं, सतयुग में बिल्कुल स्वच्छ बुद्धि रहे। अभी है तुच्छ बुद्धि और सतयुग में बिल्कुल स्वच्छ बुद्धि है। सतयुग में बिल्कुल स्वच्छ बुद्धि थे, कितने उनमें दैवी गुण थे। तुम बच्चों को दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। कहते हैं ना, ये तो जैसे देवता है, आज की दुनिया में भी कोई ऐसा अच्छा होगा, श्रेष्ठ गुण होंगे, रॉयल्टी होगी, रॉयल्टी से बात करते ना, कई बार कई लोग तो इतनी रॉयल्टी से बात करते हैं, जो बात कहनी धीरे से, जोश से नहीं, तो फिर उनको क्या कहते हैं, तो जैसे कि देवता है, जैसे कहते हैं ना, ये तो जैसे देवता है। भल साधु संत महात्मा को लोग सब मानते हैं, परंतु वह दैवी बुद्धि तो है नहीं, रजो बुद्धि हो जाती, कितना भी कहो लास्ट में आते हैं तो रजो तमो बुद्धि हो जाती, रजो बुद्धि हो जाते हैं। राजा रानी प्रजा है ना, राजधानी कब और कैसे स्थापन होती है ये भी दुनिया नहीं जानती। यहाँ तुम सब नई बातें सुनते हो, रजोगुणी है, समोगुणी है, सतोगुणी है, तो आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, तो बाबा कितनी सारी नई बातें तुम सुनते हो, यहाँ तुम सब नई बातें सुनते हो। तो माला का भी राज समझाया है, ऊंच से ऊंचे बाप, उनकी माला ऊपर में है, रुद्र वह है निराकार, फिर साकार में लक्ष्मी नारायण, उनकी भी माला, शिव बाबा ऊंचे हैं, उनकी माला रुद्र है, क्योंकि रुद्र माला में सब आत्माएं हैं, साकार में लक्ष्मी नारायण की माला है। ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बनती है, ब्राह्मणों की माला कितना भी बना लो, रोज रोज नई नई बनाते रहेंगे, लेकिन रोज रोज माला बनाते बनाते थक जाएंगे, माला बन नहीं पाती है। आज तो देखो कितनी हाई स्टेज, और फिर जाके कुछ न कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। बाबा ने, साकार बाबा ने भी शुरू में माला बनाना शुरू किया, जिसका पहले में दूसरा नंबर है, फिर दूसरी माला में एकदम लास्ट, कोई माला में तो ऐसे भी होता था जिनका नंबर वो नंबर ही कट गया, वो माया के पास चले गए। तो बाबा कहते ब्राह्मणों की माला तो बनती नहीं है, ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बनती, अंत में तुम ब्राह्मणों की माला बन जाए। अंत में क्यों बनेगी, अंत में जब संपन्न हो जाएंगे, अंत में तुम ब्राह्मणों की माला बन जाएगी। इन बातों में जास्ती प्रश्न उत्तर करने की जरूरत नहीं है। बाबा के जब माला बनाते थे ना, जिसका दूसरा नंबर आ गया, क्योंकि बस मैं तो आ गया दूसरे नंबर, फिर पुरुषार्थ हल्का हो जाता था। फिर आके बाबा से कई बच्चे पूछते थे, बाबा हमने इतना पुरुषार्थ किया, हमारा नंबर क्यों नहीं आया, उनको क्वेश्चन आते थे, तो बाबा कहते पहले पुरुषार्थ करो, इन बातों में तो जाने की जरूरत नहीं है, इन बातों में जास्ती प्रश्न उत्तर करने की जरूरत नहीं है। मूल बात है अपने को आत्मसमझ, परम पिता परमात्मा को याद करो, ये निश्चय पक्का रहना चाहिए। मूल बात है पतितों को पावन बनाना, सारी दुनिया पतित है फिर पावन बनना है, मूल वतन में भी सभी पावन है और सुख धाम में भी सभी पावन है। तुम पावन बनकर पावन दुनिया में जाते हो, गोया अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है, ये सब ड्रामा में नोंद है। पावन बनेंगे, पावन दुनिया में जाएंगे, बाबा कहते ये भी ड्रामा का पार्ट है। बाप कहते हैं सारे दिन का पोता मिल देखो, कोई भूल तो नहीं की। व्यापारी लोग मुरादी निकालते, मुरादी समझते ना, जो कमाया है, कितना कमाया है, कितना घाटा हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ है, उसको मुरादी कहते हैं। व्यापारी लोग मुरादी संभालते हैं, ये भी कमाई है। तुम हर एक व्यापारी हो, आज का टाइटल तुम हर एक व्यापारी हो। बाबा से व्यापार करते हो, कितने बड़े व्यापारी हो, व्यापार किससे करते, बाबा से। दुनिया में है कोई जो परमात्मा से व्यापार करे, बाबा से व्यापार करते हो। अपनी जांच करनी है कि हमारे में कितने दैवी गुण हैं, कितना बाप को याद करते हैं, कितना हम अशरीरी बनते जाते हैं। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है, अभी तक सब आते ही रहते हैं। बीच में आना तो एक का भी नहीं है, जाना तो सबका इकट्ठा है। बीच में जो भी आते एक आ जाता है, लेकिन जाएंगे सब इकट्ठे, और आना होता है धीरे धीरे आते हैं, जाना सबका इकट्ठा है। भल सृष्टि खाली नहीं रहती, गायन भी है ना, राम गयो रावण गयो जिसका बहु परिवार। राम भी गया रावण भी गया, उसका परिवार भी गया, परंतु रहते दोनों हैं। रावण संप्राय जाता है फिर लौट कर नहीं आता, बाकी ये वे बच जाते हैं। ये भी आगे चल सब साक्षात्कार होना है, ये जानना है कि नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, पिछाड़ी में क्या होगा, फिर सिर्फ हमारा ही धर्म रह जाएगा। बाबा ने कहा है, बच्चों को पहले ही बाबा ने बताया कि ये सब जब परिवर्तन होगा फिर क्या होगा, फिर जाकर के नया धर्म सतयुग में होगा, हम वहां पर जाएंगे, हमारा ही धर्म रह जाएगा। सतयुग में तुम राज्य करेंगे, कलयुग खत्म हो जाएगा, फिर सतयुग को आना है। अभी रावण राज्य और राम संप्रदाय दोनों, अभी रावण संप्रदाय और राम संप्रदाय दोनों है, संगम पर ही ये सब होता है। राम और रावण संगम पर है, न कि त्रेता के अंदर या त्रेता के अंत में। बाबा कहते हैं सब कुछ संगम पर होता है। अभी तुम ये भी सब कुछ जानते हो, बाप कहते हैं बाकी जो भी कुछ राज है वह आगे चलकर धीरे धीरे समझाते रहेंगे। एक बार कई ने बाबा को कहा, बाबा सारा राज पहले क्यों नहीं बताते, तो बाबा ने कहा क्यों अभी सारा बता दें। शुरू में भी बाबा ने कहा अगर ये राज बता देते तो इतना साल ज्ञान में चलते, धीरे धीरे जैसे ड्रामा का पार्ट है वह समझाते रहेंगे। जो रिकॉर्ड में मूल है वह खुलते जाएंगे, तुम समझते जाएंगे, इन एडवांस कुछ भी नहीं बताएंगे। कई आते हैं, अभी मम्मा कहाँ होगी, दादी कहाँ होगी, बाबा बता दें तो क्या है, साइंस इतनी एडवांस है, सब कुछ छोड़ करके वहां भाग जाएंगे, ना ज्ञान सुनेंगे ना बाबा को देखेंगे ना सब कुछ, पुरुषार्थ भी भूल जाएंगे। बाबा कहते इन एडवांस कुछ भी बाबा नहीं बताते। बाबा ने तो कहा है अचानक का पेपर है, हर चीज अचानक होनी है, तो बाबा कहते इन एडवांस कुछ भी नहीं बताएंगे। ये भी ड्रामा का प्लान है, ड्रामा का इतना जबरदस्त प्लान है। कोई पूछे बाबा से, बाबा कल क्या होने वाला, बाबा कहते कल की बात कल देखना, जो होगा तब मालूम पड़ेगा। ये नहीं कहने कल क्या होगा परसों क्या होगा। बाबा ने कहा अगर मैं बता भी दूं कल ये होगा तो बच्चे क्या करेंगे, पुरुषार्थ भी पूरा हो जाएगा, टेंशन में आ जाएंगे, तो कल की बात तो कल ही देखेंगे ना। तो बाबा कहते हैं इन एडवांस कुछ नहीं बताएंगे, ये भी ड्रामा का प्लान है। रिकॉर्ड खुलता जाता है, बाबा बोलता जाता है, तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातों की समझ बढ़ती जाती है। जैसे जैसे रिकॉर्ड बढ़ता जाता है वैसे वैसे बाबा की मुरली चलती जाएगी। बाबा ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, ड्रामा का राज भरा हुआ ऐसे नहीं रिकॉर्ड से सुर उठाकर बीच में रख सकते। आपको पता हो पहले शुरू में क्या था, ग्रामोफोन होता था, ग्रामोफोन के अंदर एक बहुत बड़ी प्लेट होती थी, वो उसके अंदर रखते थे, फिर चाबी भरते थे, फिर चाबी भर के स्टार्टिंग पर पॉइंट पर उसको सुई लगाते, इतनी सुई होती थी वो लगाते थे, और उस सुई को लगाते तो धीरे धीरे वो सुई घूमती रहती थी और वो गीत बजता रहता था। अगर उसको सुई को उठा के बीच में भी रखेंगे वो बीच की लाइन बजेगी, शुरू की लाइन नहीं बजेगी। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, रिकॉर्ड तो जो है जैसे, ऐसा नहीं कि बीच का ही बता देंगे। फिर रिकॉर्ड पहले ग्रामोफोन था, फिर उसके बाद टेप आई, फिर टेप तो वो पहली स्टार्टिंग की जो टेप थी वो बहुत बड़ी थी, उसके अंदर इतनी बड़ी रोल होता था वो भरते थे, फिर उसके बाद छोटी टेप आई, फिर और छोटी टेप आई, फिर वो बढ़ते बढ़ते और अभी तो क्या आ गया है, अभी तो आप सबको पता हर एक के हाथ में क्या है अभी। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं रिकॉर्ड से सुर उठाकर बीच में रख सकते हो, तो मैं रिपीट होगा नहीं होगा, वो बीच में जहां रखा वही रिपीट होगा, वह भी फिर वही रिपीट होगा, ये नई बात नहीं है। बाप के पास जो नई बात होगी वह रिपीट होगी। बाबा कहते जो नई बात बाबा को बताना होगा वो बाबा बताएंगे, बाप के पास जो नई बात होगी वह रिपीट होगी, तुम सुनते और सुनाते जाएंगे, सुनेंगे भी औरों को समझाएंगे, बाकी सब गुप्त हैं, ये राजधानी स्थापन हो रही है, सारी माला बन रही है, अलग अलग जाकर राजाई में तुम जन्म लेंगे, राजा रानी प्रजा तो सब चाहिए, राजधानी भी अलग है, राजा भी अलग, प्रजा भी अलग, सब कुछ चाहिए ना, कोई राजा बनेगा, कोई रानी बनेगा, कोई रॉयल फैमिली में आएगा, कोई रॉयल प्रजा में आएगा, कोई प्रजा में भी लास्ट में आएगा, कोई प्रजा में भी जिसको कहते नौकर चाकर बनेंगे। तो बाबा कहते हैं सारी माला बन रही है, अलग अलग राजाई में तुम जन्म लेंगे, राजा रानी प्रजा सब चाहिए, ये सब बुद्धि से काम लेना होता है, प्रैक्टिकल में जो होगा वो देखा जाएगा, या कुछ से बाबा वहाँ कैसे होगा, वहाँ की भाषा कैसी होगी, वहाँ क्या होगा, बाबा ने कहा एक तो तुमको पहले बता ही दिया है, फिर प्रैक्टिकल में क्या होगा तुम जाके देखोगे ना, जाना तो तुमको है, बाबा तो तुमको भेज देंगे, प्रैक्टिकल में जो होगा वो देखा जाएगा। जो यहाँ से जाते हैं वे अच्छे साहूकार के घर में जाकर जन्म लेते। अब ये संगम युग की बात, बाबा ने कहा अगर कोई शरीर छोड़ता अच्छा पुरुषार्थ किया तो वो कहाँ जाएगा, अच्छे साहूकार के घर में जन्म लेते हैं। अभी भी तुम्हारी वहाँ बहुत खातरी होती है, कई कई घरों में देखते ना, कई माँ बाप आते हैं कहते बच्चा आया हम ज्ञान में, इसने हमको ज्ञान में लाया, और कई कई बच्चे ऐसे ही पेट में हैं और वो माँ ज्ञान में आ गई तो उनका बहुत वो ध्यान भी रखते हैं, और फिर कई बच्चों के इतना रॉयल्टी होती है, माँ बाप उसको रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। अभी भी तुम्हारी वहाँ बहुत खातरी होती है, इस समय भी रतन जड़ित चीजें सबके पास होती है। साहूकार के घर जन्म लेगा तो साहूकार क्या देगा, उसको बढ़िया से बड़ी चीज देंगे ना, सोना चांदी रतन ही तो देंगे ना बच्चों को, तो बच्चा अच्छा आया तो माँ बाप क्या करते, अच्छी चीज देते हैं। इस समय भी रतन जड़ित चीजें सबके पास होती है, परंतु उनमें इतनी पावर नहीं, बड़ी से बड़ी चीज भी देंगे, सोना देंगे, चांदी देंगे, लेकिन उसके अंदर भी मिलावट है, सतयुग के अंदर जो चीजें हैं वो सब के सब बिल्कुल प्योर हैं, परंतु उनमें इतनी पावर नहीं है, पावर तुम्हारे में है, तुम जहां भी जाएंगे वहां अपना शो करेंगे। अब बच्चे जाएंगे, ज्ञानी बच्चे जाएंगे, जहां जाएंगे तो वहां जाकर के वो अपना शो करते हैं, माँ बाप भी प्रभावित होते हैं, वाइब्रेशन इतने अच्छे बन जाते हैं। तो बाबा कहते तुम जहां भी जाएंगे वहां अपना शो करेंगे, तुम तो ऊंच बनते हो तो तुम जाकर के वहां दैवी चरित्र दिखाएंगे। आश्रय बच्चे जन्मते ही रोते रहते, कई बार बच्चे पैदा होते रोते रहते, माँ बाप भी रोते रहते, बच्चे भी रोते रहते, वातावरण इतना खराब हो जाता है घर के अंदर, कोई जो रॉयल बच्चे पैदा होते हैं कितना सुंदर वातावरण होता है। तो बाबा कहते आश्रय बच्चे जन्मते ही रोते रहेंगे, गंदे भी होते हैं, तुम तो बड़े कायदे से चलेंगे। आप फिर सत्यों के अंदर बता रहे कि तुम तो वहां पर बड़े कायदे से चलेंगे, गंध आदि की तो कोई बात ही नहीं है, आजकल के बच्चे तो गंदे हो पड़ते, पैदा होते ही दुखी, फिर आगे थोड़े बड़े छोटे छोटे बच्चे भी आजकल क्या क्या काम कर देते हैं, तो आजकल के बच्चे इतने, क्योंकि आश्रय अवगुण है ना, तो उसके कारण कुछ न कुछ गंदे काम करते हैं, आजकल के बच्चे तो गंदे हो पड़ते हैं, सच्चू में तो ऐसी बात हो न सके। फिर भी हेवन है, वहां बांस आदि नहीं आती जो कहना पड़े अगरबत्ती जलाओ। अच्छा सुना, यहाँ पर चारों तरफ सुबह अमृत वेले से देखो तो अगरबत्ती जल जाती है। आगे की अगरबत्ती और आज की अगरबत्ती के अंदर बहुत फर्क है। आगे की जो अगरबत्ती होती थी प्योर होती थी, और आजकल की अगरबत्ती आती है उसके अंदर कई प्रकार की मिलावट होती है, मिक्सचरिटी होती है, कहीं की कोई खुशबू, कोई खुशबू, कोई कैसी होती है, कोई खुशबू ऐसी होती है जो अंदर जा करके और भी तकलीफ देती है। तो इसलिए थोड़ा इस अगरबत्ती जलाने वाले भी इस बात का ध्यान रखें कि जला करके जल्दी से उसको बुझा दे, नहीं तो उसकी जो स्मेल होती है कभी कभी किसी को थोड़ा तकलीफ भी दे सकती है। क्योंकि अगरबत्ती जलाते कि थोड़ा टाइम फ्रेश एयर हो जाए, पूरा टाइम लंबी लंबी अगरबत्ती जलाएंगे वो भी तो क्या करती, नुकसान देती ना। तो बाबा कहते आज कलयुग की दुनिया के अंदर सब कुछ ऐसा ही पॉल्यूटेड है। तो बाबा कहते हैं तो वहां कोई ऐसी बांस ही नहीं होती जो कहना पड़े अगरबत्ती जलाओ। बगीचे में बहुत खुशबूदार फूल होंगे। अब फूल होते इतने, अभी चंपा का फूल होता है ना, साकार बाबा कहते हैं यहाँ भी वहां चंपा का फूल लगा हुआ है। जब गर्मी आती चंपा का फूल होता है, क्रॉस करते तो उसकी खुशबू चारों तरफ होती है। तो फूल यहाँ के फूल भी थोड़े आर्टिफिशियल हैं, रियल भी नहीं है, थोड़ी थोड़ी मिक्सचर की तो भी इतनी खुशबू देते हैं। तो सच्चे में जो फूल होंगे तो कितनी खुशबू देंगे। तो बाबा कहते वहां पर वहां बांस आती नहीं जो कहना पड़े अगरबत्ती जलाओ। बगीचे में बहुत खुशबूदार फूल होते हैं, यहाँ के फूलों में इतनी खुशबू नहीं। वो भी बाबा ने बता दिया, अभी फूल क्या लगे चारों तरफ फ्लावर है, लेकिन आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल है फ्लावर वो आर्टिफिशियल नहीं, लेकिन खुशबू वाले फूल नहीं है। यहाँ के फूलों में इतनी खुशबू नहीं है, वहां तो हर एक चीज 100% खुशबू होती है, यहाँ तो 1% भी नहीं है। आप समझ जाओ कहाँ कहाँ परफ्यूम फैला देते हैं, कहाँ कुछ करते हैं। तो बाबा कहते हैं वहां तो 100% खुशबूदार है और यहाँ तो 1% भी खुशबू नहीं है। वहां तो फूल भी फर्स्ट क्लास होंगे, यहाँ भल कोई कितना भी साहूकार होता है तो भी इतना नहीं है। कितना बड़ा साहूकार हो, अमीर हो, लेकिन सतयुग की भेंट में तो इतना नहीं है। वहां तो किस्म किस्म की चीजें होंगी। अब सुनो क्या क्या होगा। पहले बाबा ने कहा फूल खुशबूदार होंगे, सुंदर बगीचे होंगे, वहां के फूल यहाँ नहीं मिल सकते, वहां के फूल भी बहुत सुंदर होंगे। वहां की हर एक चीज तो किस्म किस्म की चीजें होंगी, बर्तन आदि सब सोने के होंगे, समझा, बर्तन आदि सब सोने के होंगे, जैसे यहाँ के पत्थर वहां फिर सोना ही सोना। यहाँ हर चीज पत्थर की बनाएंगे, काम भी पत्थर से लेते, और वहां पर हर चीज सोना ही सोना है। रेतों में भी सोना होता है, चारों तरफ सोना ही सोना है, सोना चमकता है। विचार करो कितना सोना होगा जिससे मकान आदि बनेंगे। मकानों में भी सोना, हीरे मोती लगे होंगे, उसकी लाइट से ही, सारा रिफ्लेक्शन से ही पूरा टाइम दिन रात रोशनी रहेगी। वहां ऐसा मौसम होगा, अब कैसा होगा, ना सर्दी होगी ना गर्मी होगी, है ना गर्मी हो, कहेंगे पंखा चलाओ, एसी चलाओ, सर्दी है तो कहेंगे हीटर चलाओ, ये चलाओ। तो बाबा याद करा रहे कि वहां का मौसम ऐसा होगा, वहां पर मकान आदि ऐसे बनेंगे, वहां ऐसा मौसम होगा ना सर्दी ना गर्मी, वहां गर्मी का दुख नहीं जो पंखा चलाना पड़े। अब बाबा के टाइम पर तो पंखा ही नहीं था, पंखे की थे ही नहीं बाबा के टाइम पर, ना तो हीटर थे ना पंखा था। बाबा के टाइम पर क्या था, एक बड़ी सी सिगड़ी, उसको अंगीठी, उसको सिगड़ी कहते हैं सिंधी में, एक अंगीठी होती थी, ठंडी के टाइम पर अंगीठी के चारों तरफ बैठ जाते थे। बाबा के अव्यक्त होने के बाद भी जब हम आए तो यहाँ पर कोई हीटर थोड़ी था, हम सब जो बहुत ठंडी होती थी शाम के टाइम, एक बहुत बड़ी अंगीठी जली होती थी, सब उसके आसपास सब बैठे हुए हैं। तो बाबा कहते उस टाइम भी पंखा नहीं था, लेकिन बाबा बता रहे क्योंकि बॉम्बे में तो जानते हैं बाबा, तो बाबा बता रहे हैं वहां ऐसा मौसम होगा न सर्दी न गर्मी, वहां गर्मी का दुख नहीं जो पंखा चलाना पड़े। उनका नाम ही है स्वर्ग, वहां अपार सुख होता है। तुम्हारे जैसा पदमा पदम भाग्यशाली कोई बनते ही नहीं है। नशा तुम्हारे जैसा पदमा पदम भाग्यशाली कोई बनते ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा गाते हैं, उनको जो ऐसा बनाते हैं तो उनकी कितनी महिमा होनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण को ऐसा हो जिसने बनाया, बनाने वाला कितना हो चुकी थे ना, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना ना सुंदर होगा। जिसने इनको बनाया वो कितना ऊंच और महान होना चाहिए। तो बाबा कहते वास्तव में उसकी महिमा गानी चाहिए, लेकिन उसकी महिमा नहीं गाते हैं, उनको ऐसा बनाते हैं उनकी कितनी महिमा चाहिए। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर देवताओं की भक्ति शुरू होती है, वह भी भूत पूजा कहे। क्यों? क्योंकि शरीरों की पूजा करते ना, तो बाबा कहते वह भी भूत पूजा कहेंगे। शरीर तो वह है नहीं, पांच तत्वों की पूजा होती है। शिव बाबा के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे कि उनकी भूत पूजा है, उनके तो वैसी लिंग बना के करते हैं। पूजा करने के लिए कोई चीज का वह सोने आदि का बनाते हैं। द्वापर से जब पूजा शुरू करते हैं तो उस समय तो सोने का बनाते हैं, हीरों का बनाते हैं, फिर धीरे धीरे गिरते जाते हैं, सारा सोना चांदी हीरा मोहम्मद गजनी लूट के ले गया, फिर बाद में जाके पत्थर का बनाना शुरू किया। तो बाबा कहती हैं पूजा करने के लिए कोई चीज का वह सोने का बनाते हैं। आत्मा को थोड़ी ही सोना कहेंगे, आत्मा को सोना तब कहेंगे जब वो प्योर है। आत्मा किस चीज की बनी हुई है ये भी नहीं कह सकते। शिव का चित्र किस चीज का बनाया हुआ है वह झट बता देंगे। अब आत्मा तो क्या है, किस चीज की बनी वो तो जानते ही नहीं है। आत्मा किस चीज की बनी हुई है, शिव का चित्र किस चीज का बनाया हुआ है वह झट बता देंगे, परंतु आत्मा परमात्मा किस चीज के बने हुए हैं ये कोई भी बता नहीं सके। सच्चू में पांच तत्व भी शुद्ध होते हैं, यहाँ है अशुद्ध। तो पुरुषार्थी बच्चे ऐसी ऐसी ख्यालात करते रहेंगे। बाबा मिश्र कहते थे सच्चू में क्या होगा, वो विचार संग मंथन करो, संगम युग पे हम क्या करें। ब्रह्मा बाबा खुद भी विचार संग मंथन करते थे, सच्चू में कैसा होगा, हम कैसे राज्य करेंगे, हमारी आत्मा कैसे होगी, प्रकृति कैसे होगी। तो बाबा कहते जो अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं वो विचार संग मंथन करते रहेंगे। बाप कहते हैं इन सब बातों को भी छोड़ दो, विचार से मंथन भी करो उसमें फंस नहीं जाओ, लेकिन बाबा को याद करना है। बाप कहते हैं इन सब बातों को छोड़ दो, जो होना होगा वो होगा, वहां चल करके देखेंगे। अब उसमें पड़ जाएंगे ना, तो एक बार बताया था ना, कई बच्चे कहते वहां ऐसा होगा वहां ऐसा, अभी भी कई बच्चे एस्टिमेट निकालते रहते, ही होगा इतने समय में होगा। बाबा कहते क्यों टाइम वेस्ट करते, अपना भी करते हो दूसरों का भी करते हो। अपना पुरुषार्थ करो, बाबा को याद करो, पवित्र बनो और पावरफुल बनो। तो बाबा कहते वहां जो होना होगा वो होगा, पहले बाप को तो याद करो। चारों तरफ से बुद्धि योग हटाकर माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जो कुछ सुनते हो उन सबको छोड़ एक बात पक्की करो कि हमको सतो प्रधान बनना है पक्के। क्योंकि नहीं तो कई तो बच्चे ऐसा पूछते रहते हैं वहां क्या होगा, बच्चे कैसे होंगे, वहां की प्रकृति, वो अप्रोक्सीमेट तो बाबा ने बता ही दिया, लेकिन बाबा ने कहा सब बातें छोड़ करके एक बात पक्की करनी है कि हमको सतो प्रधान बनना है। जो कुछ सुनते हो उन सबको छोड़ एक बात पक्की करो कि हमको सतो प्रधान बनना है। फिर सत्यु में जो कलप कलप हुआ होगा वही होगा, उसमें कुछ भी फर्क पड़ नहीं सकता। मूल बात है बाप को याद करो, ये है मेहनत, वह पूरी करो। बाबा कहते जो बाप को याद करना है उसको करो, वो तो पूरी करेंगे नहीं, सारा दिन अपनी बुद्धि चारों तरफ पता नहीं किन किन बातों में लगा करके रखते हैं, वह पूरी करो। तूफान तो बहुत आते हैं, मूल बात है बाप को याद करो, ये है मेहनत। बाबा ने कहा है जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है वह सब सामने आता है, तो सब तरफ से बुद्धि को हटाकर मेरे को याद करने का पुरुषार्थ करो, अंतर्मुखी होकर। बाबा को कैसे याद करना है? बुद्धि को चारों तरफ से हटा करके अंतर्मुखी होकर याद करना है। तुम बच्चों को स्मृति तो आई है, सो भी नंबर वन पुरुषार्थ अनुसार सर्विस से मालूम पड़ सकता है, सर्विस करने वालों की सर्विस की खुशी रहती। अब बाबा ने दूसरी बात सुनाई, एक तो बाबा बच्चों की सर्विस से जान सकते, दूसरा सर्विस करने वालों को खुशी रहती है, केवल उसको भी नहीं जिसकी की उसकी, नहीं तो सर्विस क्या करते ना उसमें झगड़ा, मेरे को सेवा करनी, मेरे को करना, मेरे को ही सब कुछ करना, मेरे जैसा कोई नहीं कर सकता, मुझे ही चांस मिलना चाहिए, ये कर रहा है तो मैं भी करूं, ये क्यों कर रहा है, मेरे को क्यों नहीं मिलता। अरे सर्विस तो क्या, अपना दिमाग इतना टेंशन में ले लेते, ये कर रहा है, अपने को कंपेयर करते। बाबा कहते इन सब बातों से बुद्धि को हटाना, फिर कहेंगे उसको चांस दिया, मैं इतना पुराना हूँ, मैं 20 साल का हूँ, मेरे को तो ये भी मिलना चाहिए, पता नहीं क्या क्या सारा दिन बोलते। तो आज बाबा ने सब प्रश्नों का उत्तर दे दिया है कि सर्विस करने वालों को सर्विस की खुशी रहती है, जो अच्छी सर्विस करते हैं। अब कोई कहे ना मैं बहुत बड़ा योगी हूँ, मैं बहुत सेवा करता हूँ, बाबा कहते भल कहते रहो, कितना भी कहो सुनाते रहो, मैं बड़ा योगी हूँ, बहुत अच्छी सेवा करता हूँ, बाबा कहते बहुत अच्छा कहो, लेकिन सर्विस करने वालों का मालूम पड़ जाता है, उसकी सर्विस का सबूत मिलता है, पंडे बनकर आते हैं बाबा के टाइम पर, पंडे उसको कहते हैं जो गाइड ग्रुप लीडर होता था उसको पंडे कहते हैं। तो बाबा कहते पंडे बनकर आते हैं, कौन महारथी हैं, कौन घोड़े सवार हैं और कौन प्यादे हैं, बाबा समझ जाते थे उनकी सेवा से, कौन महारथी है, कौन घोड़े सवार, कौन प्यादे हैं, ये झट पता पड़ जाता है। अच्छा कोई कहे मैं महारथी, भल कहे, लेकिन उनकी सेवा से मालूम पड़ता है। तो बाबा कहते वो तो सब पता पड़ जाता है, कोई कहे या ना कहे, इसलिए बाबा ने पहले से राज बता दिया है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार, दूसरी सब बातों को छोड़। कितना बाबा पक्का करा रहे हैं, दूसरी सब बातों को छोड़, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर सतो प्रधान बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरा बुद्धि में अच्छे अच्छे ख्यालात लाने हैं, हमारे राज्य में स्वर्ग में क्या क्या होगा उस पर विचार कर अपने को उस जैसे लायक चरित्रवान बनाना है, यहां से बुद्धि निकाल देनी है। वरदान सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले सर्व हद की चाहना से परे सदा संपन्न और समान भव। सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले सर्व हद की चाहना से परे सदा संपन्न और समान भव। सेवा का अर्थ है मेवा देने वाले, सेवा का अर्थ है मेवा खुद को मिले दूसरे को मिले, ऐसा नहीं कि उसमें टेंशन। अगर कोई सेवा असंतुष्ट बनाए तो वो सेवा सेवा नहीं है, ऐसी सेवा भल छोड़ दो। ये बहुत बड़ी बात है, असंतुष्ट होते रहते करते रहते छोड़ेंगे नहीं। बाबा कहते जहां असंतुष्टता है टेंशन है, लड़ाई झगड़ा है, तो बाबा कहते ऐसी सेवा भल छोड़ दो लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट रहते हैं, वैसे मन की तृप्ति वाले भी संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है, तो तृप्त आत्मा में कोई भी हद की इच्छा, मान शान सेल्वेशन साधन की भूख नहीं होगी। वह हद की सर्व चाहना से परे सदा संपन्न और सम्मान होंगे, बाप समान होंगे। स्लोगन, सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना अर्थात पुण्य का खाता जमा होना। सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना अर्थात पुण्य का खाता जमा होना। आज 30 तारीख है, आज का अव्यक्त इशारा हम सुनेंगे। आज 30 तारीख है, जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों का संहार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया। ये अभी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। बाबा बता रहे असुर कोई व्यक्ति नहीं लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया, ये अभी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें सभी आसुरी कलयुगी ज्वाला कलयुगी संस्कार जलकर भस्म हो जाए। बाबा कहते हैं अब ऐसी ज्वाला ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें सभी आसुरी कलयुगी संस्कार जलकर खत्म हो जाए। तब संस्कार मिलन की रास होगी और नया संसार आएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे। कल तो बाबा का विशेष रतन सेवा में अथक सेवाधारी सदाहान जी का पाठ पक्का और बिल्कुल अवस्था अचल अडोल गुणेश्वर भाई को हम सब ने मिल करके विदाई दी और जाकर के अभी नए रोल में जाकर के अपना नया पार्ट बजाएंगे, क्योंकि लास्ट में उनकी स्टेज बहुत ही अच्छी थी। जैसा कि हल्के होकर के ही रह रहे थे, कोई भी संकल्प नहीं, पता भी था ये शरीर क्या कर रहा है, लेकिन अवस्था बहुत अच्छी। कल सब ने मिलकर के ज्ञानेश्वर निवासी मधुबन निवासी हॉस्पिटल सभी ने उनको बहुत ही नई सेवा के लिए विदाई दी। अच्छा, ओम शांति। अभी